वो एक दौर गुजर गया। मैं आपको माजरत के साथ कहूँ, आप जिस एज में या आपसे भी थोड़ा सा एक पिछली जनरेशन ले लें, आज जो माँ बाप की सूरत में, उनमें कुछ जनरेशन ऐसी गुजरी हैं पिछली 50 सालों में कि जो वी आर सॉरी टू बी मुस्लिम बिहेवियर आ गया था। अगर आप बरसगीर पाको हिंद की हिस्ट्री पढ़ें, और आप में से कुछ साथी हो सकता है उस दौर से भी गुजरे हों जब पाकिस्तान और इंडिया नहीं बना था और सब सब कॉन्टिनेंट में रहते थे, मुसलमान और हिंदू साथ थे और अंग्रेज़ की हुकूमत थी। आप जाके अपनी हिस्ट्री पढ़ के देखिए, उस वक्त असल में मुसलमानों को उन्होंने लेट डाउन करना अपना आप सिखाया। ये लफ्ज़ खान सामा क्या है? खान मुसलमान कौम थी और सामा सामान से, सामान उठाने वाले को खान सामा कहते थे। ये उस दौर में हुआ था कि मुसलमानों को गवर्नमेंट के लेवल की जॉब से उठाकर घरों में नौकरियां दिलवाई गई, और ये वो दौर था सिस्टर्स जब मुसलमानों का शलवार कमीज ये नाइट सूट में बदला था। दिन में कहीं जाना है बाहर तो पैंट कोट पहनेंगे, इवन रात को 10 बजे भी कोई मिलने आ गया तो कहना पहले इसको बिठाओ फिर जाके पैंट कोट ही पहन के बाहर आएंगे, क्योंकि ये शलवार कमीज ये तो छोटा लिबास है। ये दौर गुजरे हमारी हिस्ट्री में, उस दौर में फिर मुसलमानों को शर्मिंदा होना सिखाया। और जब आपने सुना होगा कि जब ढाका की मलमल बड़ी आम थी, जिसके बारे में मारूफ है कि पूरा उसका थान माचिस की डिबिया में आता है, तो जब वहाँ रूल हुआ था अंग्रेज का तो उन्हें वो अंगूठे कटवा दिए थे जिनसे वो बुनते थे, क्योंकि उनको पता था कि ये इतना बिकता है कि हमारे मुल्कों की प्रोडक्ट नहीं बिकती। ये गुजर गया दौर, अब वो नहीं आएगा इंशाल्लाह कभी भी। आज की ये जो सदी है जो ख़त्म हुई 19वीं और 20वीं, जिसमें हम कदम रख चुके हैं, ये एक रोशन सदी है। अब इस्लाम का सूरज चमकता हुआ दिख रहा है। आज जितना शोर है और गुलोला है और छोटी छोटी बातों को बेस करके अब जो मीडिया में छाला जाता है, ये हमारे लिए खुशखबरी है। आपने सुना होगा कि जब सैलाब आता है ना तो उसके बाद खैर भी आती है। सैलाब जब गुजर जाता है ना तो अपने पीछे जरखेज मट्टी छोड़ जाता है, कई सालों की बंजर मट्टी होती है, समंदरों के अंदर से दरियाओं से आई हुई फ्रेश मट्टी आती है, फसलें बहुत खूबसूरत उगती हैं। और आपने देखा होगा कि जलजलों के बाद कितने माइंस डिस्कवर हो जाते हैं, कितने पहाड़ों की तहों में छुपे हुए खजाने आ जाते हैं। तो इस वक्त इस्लाम का हाल यही है। ये अल्लाह सुबहान तआला के एक इशारे हैं जिसको मैंने और आपने समझना। इस वक्त हमारी नस्लों में जो इस्लाम सीखने का शौक है, जो उनका कॉन्फिडेंस है, मैं कह सकती हूँ कि वो उनसे पिछली नस्ल या उनके पेरेंट्स में नहीं है। आज भी आप देखें मस्जिदों में तो काली दाढ़ियों वाले सफ़ेद दाढ़ियों की नस्बत ज़्यादा है। आज भी देखें 70-80 के करीब पहुंचा हुआ बाप क्लीन शेव है और बेटा जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह सुन्नत का ताबे है। उनको शर्म नहीं आती, क्यों? वो कहते हैं ना कि सितम जब बढ़ता है तो फिर वो ख़त्म ही हो जाता है। हमारी इस वक्त की जो जनरेशन है, मैं आपको जो तालिबे इल्म उनको तो ज़रूर समझ आएगा, वादी तीह के वो 40 साल गुजार के आई हुई वो बनी इसराइल की नस्ल है जिन्होंने बैतुल मक़दस फ़तह किया था। हिस्ट्री सुनी होगी आपने, पढ़ी होगी कुरान में, ज्यूस भी अल्लाह के चुने हुए थे। बनी इसराइल बड़ी खूबसूरत कौम थी, अल्लाह की चुनी हुई थी। या बनी इसराइल उस्कुरु नेमती अल्लती अनअमतु अलैकुम, 3 दफ़ा अल्लाह ने सूरह बकरा में ये खिताब दिया, ओ बनी इसराइल मेरी नेमतों को याद करो जो मैंने तुम पे दी। कौन सी नेमत थी जो अल्लाह ने इनको बनी इसराइलों को नहीं दी? इंटेलेक्ट इनका स्ट्रॉन्ग, ऑर्गेनाइज ये हैं, अकलमंद बहुत हैं, प्लानिंग कई की हजारों सालों की कर लेते हैं, अल्लाह ने इनको दिया था, लेकिन इन्होंने उनको पाकर मिसयूज़ किया। अकल होशियार हो गई, लोगों के नफे नुकसान भी छीनने लगी, और किस्सा मुख्तसर कि जब अकल वही इलाही से कटती है तो वो अय्यार हो जाती है। यही कुछ हुआ, अल्लाह ने फिरौन की गुलामी में दे दिया। वही जो हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम के दौर में इतने शाही मेहमान बनकर मिस्र में आए थे शाम से, हिस्ट्री पढ़ी होगी सूरत यूसुफ में, कितनी उनको इज्जत मिली, कितना प्रोटोकॉल मिला कि उनको तख्त पे बिठा के आगे सजदे तक होते जा रहे हैं। वही कौम जो कई साल तक हज़रत यूसुफ के बाद भी मिस्र में बादशाही मेहमानों की हैसियत से रही, लेकिन फिर उम्मत का बिगाड़, फिर बेअमली और वही ख़यानतें और वही अहद शिकनियाँ के एक वक्त आया कि फिरौन नामी हुकूमत के ज़ेर दस्त आ गए, और फिर हर दौर का फिरौन उन पर जुल्म करता रहा करता रहा, हत्ता कि अल्लाह सुबहान तआला जिस फिरौन का जिक्र कुरान पाक में करता है वो फिरौन था जिसका मुकाबला हज़रत मूसा से हुआ। वाइस नज्जैनाकुम मिन आलि फिरौन यसूमूनकुम सूअ अल-अज़ाबि युज़ब्बिहूना अबनाअकुम व यस्तहयूना निसाअकुम वफ़ी ज़ालिकुम बलाउन मिन रब्बिकुम अज़ीम। याद करो वो वक्त जब अल्लाह ने तुम्हें उस फिरौन से और उसकी आल से बचा दिया कि जो तुम्हारे ऊपर मुश्किलात डालता था, तुम्हारे बेटों को जिबा करता था, तुम्हारी बेटियों को जिंदा छोड़ता था, करता सब वो था, लेकिन अल्लाह ने उनपे कहा वफी ज़ालिकुम बला मिर रब्बी को मजीद। और ये अल्लाह की सुन्नत है, लिख लीजिए, ये अल्लाह की सुन्नत है कि जब मुसलमान अपनी किताब पे अमल नहीं करते ना, तो अल्लाह अब उनको जलजलों में नहीं मरवाता और आसमान से पत्थर नहीं फिकवाता और उनके लिए कौम समूद और कौम आद जैसे अजाब नहीं आते। आज के दौर में उम्मत मुस्लिमा के लिए जो अजाब की सूरत है वो क्या है कि अल्लाह उस पर दुश्मनों को मुसल्लत कर देता है। वाज़ह हदीस है, सही हदीस है, आपने बहुत दफ़ा सुनी होगी। हज़रत मूसा ने भी एक दफ़ा पूछा, अल्लाह ताला आप आसमान पे हैं, मैं ज़मीन पे हूँ, मुझे कैसा पता चला कि आप हमसे खुश हैं कि नाराज़? तो अल्लाह ताला ने कहा कि मूसा, जब तुम पर तुम्हारे बेहतरीन लोग हुक्मरान हों तो ये मेरी तुम लोगों पर रजामंदी की अलामत है, और जब अल्लाह तुम पर बुरे लोग मुसल्लत कर दे तो ये मेरे अजाब की अलामत है। तो अल्लाह आज मुसलमानों पर जब भी किसी के जुल्म को आम करेगा उसके पीछे अल्लाह की कोई आजमाइश होगी। बनी इसराइल के साथ भी यही हुआ था, सदियों से पिस रहे थे और दुआएं करते थे कि अल्लाह कोई मसीहा भेज, हम इस फिरौन के चुंगल से आजाद हों। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को भेज दिया, कितने साल फिरौन के घर में रहे, फिर मदियन चले गए, 10 साल वहां सफर कर करा के वापसी पे आ रहे थे, नबूवत मिल गई। या मूसा, मूसा को नबूवत दी और कहा जाओ फिरौन के पास और जाके कहो उससे बड़ी अच्छी अच्छी बातें, सब सुन चुके हैं। फिर मूसा अलैहिस्सलाम का जिहाद शुरू हो गया फिरौन के साथ। अब फिरौन थ्रेट फील कर रहा है कि ये क्या होगा, ये तो मेरी बादशाहत चली जाएगी, दिस एंड दैट, और वो सब मनाजरे मुजाहरे जादूगरों के कुरान में बहुत सारे हैं। बिल आखिर जाल हक वज़ाहक अल्बातिल इन्नल बातिल काना ज़हूका, वही मामला हुआ जो आखिर में होता है। अल्लाह ने फिरौन को डुबो दिया और बनी इसराइल सब की नजरों के सामने दरिया में से रास्ते बनते हुए चली गई। ये क्या सिर्फ बनी इसराइल के साथ हुआ था? बहुत सारे लोग मौजज़ों का इनकार करते हैं, कहते नहीं वो कैसे हुआ होगा, बस एक एग्जाम्पल दी है। हालांकि वो जगह आज भी जाके आप देख सकते हैं, मुझे इत्तफाक हुआ उसको देखने का, वो पट्टी जिसके करीब वो जगह जहां से मूसा अलैहिस्सलाम बनी इसराइल को लेकर दरियाओं में से गुजरे थे, आप भी जाके आज देख सकते हैं, 3-4 मील की जगह। जी बिल्कुल है, अल्लाह ने उसको निशानी के रखा हुए तौर पर। कहने का मतलब समझिए, इस वक्त जब कौमें डिजर्व करती हैं तो अल्लाह पहाड़ों में रास्ते बना देता है, अल्लाह दरियाओं को खुश कर देता है। जब कौमें अल्लाह की मदद को डिजर्व करती हैं, अल्लाह आसमान से फरिश्ते भेज देता है जैसे बदर में भेजे। तकाबुल कर ले बनी इसराइल का मुसलमानों के साथ, एक एक वाक्य का तकाबुल आपको नबी सल्लम की जिंदगी में दिख जाएगा। उधर फिरौन का डूबना एक मुसलमान के लिए बहुत बड़ी अल्लाह की कुदरत की निशानी थी, इधर की बदर। उधर फिरौन पानी में डूबा था, इधर बदर के कुएं में अबू जाहल और उतबा शैबा रबिया जैसे 70 कुफर के सरदार डुबो दिए गए। दोनों का जिक्र कुरान में इकट्ठे ही आता है, कदाबी आली फिरौन, कुरान पढ़ते हैं आपको ये सारी चीजें जुबानी याद हो जाती हैं। उधर भी फतह थी, इधर भी फतह, उधर भी मूसा के साथ लाखों लोग थे लेकिन उस वक्त उनका ईमान इतना बुलंद था कि अल्लाह ने दरियाओं में रास्ते बना दिए। इधर 313 टूटी हुई तलवारों और 2-4 घोड़ों और ऊंटों के साथ मुसलमानों को फतह दे दी, 1000 का लश्कर मगलूब हो गया। अल्लाह अपनी मदद के मुजाहरे करता है, लेकिन आगे जाके क्या हुआ? जब बनी इसराइल को फतह मिल गई, वादा क्या था, इधर से निकलो और बैतुल मकदस तुम्हारा होमलैंड है, जाओ और वहां जाके तुम अल्लाह का दीन गालिब करो। बस ये है क्राइटेरिया जिसको इस वक्त आज मैंने और आपने समझना है। अगर वो समझ गए तो आज के इशारे आपको खुद समझ आएंगे। अल्लाह ताला ने बनी इसराइल को मुल्क शाम से निकाला हुआ था, मिस्र में तो गुलाम बन के आए, गुलामी खत्म हुई, फिरौन डूब गया, उनके घर बंगले सब अल्लाह कहता इनको मिल गए। इरादा क्या था कि बस अब यहां से निकलो और जाहिर अपने घर जाओगे, अल्लाह ना करे हम में से किसी को कोई इस मुल्क से निकाले तो कहाँ डालेगा, हमारे मदरलैंड भेजेगा ना जहाँ के हम बोर्न एंड रेस्ड होते हैं। तो बनी इसराइल को सिंपल हुक्म था कि अब वापस जाना है बैतुल मकदस जाओ, जाना भी चाहते थे। हुआ क्या, जितना अरसा ये मिस्र में गुलाम बने रहे अब घर खाली तो रहता नहीं, मुल्क शाम पे इमाल का नाम की कौम ने कब्जा कर लिया। कह लीजिए दुश्मन, बनी इसराइल उस दौर का मुसलमान है और इमाल का कह लीजिए उस दौर का कुफर है। उन्होंने जब बैतुल मकदस पे कब्जा कर लिया, मुल्क शाम उनके अंडर था। अब जाहरी बात है, ये तो सिंपल सी बात है, आप अल्लाह ना करे आपके घर पे कोई कब्जा कर ले तो आराम से तो आप जाके कहेंगे जी आप निकल जाइए प्लीज हम आ गए, तो वो नहीं निकलेगा, पुलिस बुलानी पड़ेगी, मुकदमा करना पड़ेगा, लॉयर करना पड़ेगा। अल्लाह ने बनी इसराइल को कहा कि देखो मैं तुम्हें वादा देता हूँ, मैं तुम्हें वो घर दूंगा, सनजीदुल मुहसिनीन, वो घर तुम्हारा, फतह तुम्हारी, एक दफा तुम बस इबादियती से गुजरते गुजरते सीधे जाओ और दुश्मनों को हम आ गए हैं, पीछे हटो, हमारा घर खाली करो, और अगर नौबत आई तो लड़ भी लेना, लेकिन तुम्हारा हाल क्या हो, बकुल हित्ततुन हित्ततुन, गुनाहों की माफी मांगते हुए झुकते हुए आजजी के साथ जाना बस। वो कहते हैं ना कि गुलामी में बदल जाता है कौमों का जमीर, बनी इसराइल पे उस दौर में ये रिवायत आई। फिरौन की गुलामी में थे तो रोते थे, अल्लाह को मसीहा मिले, कोई जमीन का अपना टुकड़ा मिले जिसमें जाके आबाद हो। लेकिन याद रखिए, बंदों का गुलाम बनकर बंदा भी गुलामी बन जाता है। ये एक रब की गुलामी है जो बंदे को आजाद करती है। बनी इसराइल में चंद बुराइयां पैदा हो गईं, जिसमें सबसे बड़ी बुराई बुजदिली। जब भी मुसलमानों का मोरल डाउन होगा ना, तो वो बुजदिल जरूर होंगे, जैसे इस वक्त का मुसलमान हुआ हुआ दिखता है। हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, मुसलमानों के हाथ में है ही क्या, वे क्या है, मुसलमानों के पास उनका रब है। आप कहते हैं पाकिस्तान के पास है क्या, इंडिया के पास है क्या, फलां और बांग्लादेश के पास है क्या। आप एक तरफ कुफर और इस्लाम को रखे, ना इस वक्त किसी मुल्क को सोचे, ना किसी जमीन के टुकड़े को सोचे, ना ये पाकिस्तान की बात है, ना अमेरिका की बात है, ना इंडिया की बात है। इस वक्त सिर्फ दो लफ्ज ज़हन में रखिए, एक तरफ मुसलमान और एक तरफ काफिर। अल्लाह का वादा है, जब मुसलमान अपनी किताब पे अमल करता है, अल्लाह समंदरों में रास्ते बना देता है, जैसे बदर के मैदान में फतह दे दी अल्लाह ने। लेकिन जब मुसलमान किताब से दूर हो और दुश्मन के हाथों में देना खुद को पसंद करता है, लेकिन दुश्मन से मुकाबला नहीं करता, बनी इसराइल ने इनकार कर दिया, का नहीं करेंगे। फसह बनता व रब्बू का फकातिला इन्ना हा हुना कायदन, सूरत अल अराफ में आप पढ़िए। मूसा को कहते हैं, मूसा जाइए आप और आपका रब जाके लड़ लें, हम इधर बैठे हैं नऊज़ुबिल्लाह, हम यहाँ बैठ के खाएंगे पियेंगे मजे करेंगे, आप जाइए। यानी जिहाद का इनकार किया, दुश्मन से मुकाबले का इनकार किया। लिहाजा इसकी सजा में 40 साल तक वादी तीह में अल्लाह ने धक्के खिलाए। वो धक्के नहीं थे, असल में तरबियत थी। उन्हीं 40 सालों में वो बुढ़े बुजुर्ग जिन्होंने ये किया था वो फौत हुए, और युश्य बिन नून की क्यादत में उनकी यंग नस्ल तैयार हो गई। कालिब योहन्ना और युश्य बिन नून और कई नाम मिलते हैं। जब 40 साल में एक पूरी नस्ल मिटी, उन्होंने कहा हम चलेंगे, और मूसा का भी इंतकाल हो चुका है इसी सालों में, तो फिर बैतुल मक़दस पे हमला किया गया, और अल्लाह की मदद से वो ऐसे फतह हो गया कि जैसे वो आपके हाथ में रखा हुआ था। और बैतुल मक़दस इतने सालों के बाद फिर मुस्लिम्स के हाथ में आ गया। उस वक्त तो मुस्लिम ही थे ना, चाहे हम उनको ज्यूस के या बनी इसराइल के, क्या पता चला 40 साल के बाद ये तीह में नस्लें परवान चढ़ी। मैदान आज भी इस 2015 के डेट को लिख लीजिए, ये 10-12 साल 20 से शुरू हो चुका है, इस वक्त हम मुसलमान बिल्कुल वादिये तीह में गुजर रहे हैं। ये अल्लाह की तरफ से जो हर तरफ से हमें थपेड़े पड़ रहे हैं ना, कभी आपने सोचा अल्लाह सुब्हान तआला क्या कहता है कि ये मेरी उम्मत है, मेरे नबी की उम्मत है चुनी हुई, क्या आज हम चोजन लगते हैं। दूरी बतलाई है मुजिल्ल वल मस्कना नहीं है, गोली कहीं चलती है शक पड़ता है ये मुसलमान होगा, जहाज किसी का गिरता डर होता है ये मुसलमान होगा, मुसलमान के नाम के साथ नाम क्या लग गया, मैं तो जुबान पे भी नहीं लाती। आज जिसका जो दिल चाहता है प्यारे नबी की उम्मत को वो टाइटल दे के चल पड़ता है, क्या हमें ये जिल्लत महसूस नहीं हो रही। हम कहाँ अपने घर के चौधरी बने, और हम कहाँ अपने घर के रईस बने, और हमारे घर में तुम्हारी बड़ी इज्जत है, अपने खानदान में तुम बड़े पैसे वाले हैं, हमारी कोठी की भी धूम है, हमारे जेवरात की भी धूम है, कभी दुनिया में जाके देखे हैं मुसलमान की आज क्या इज्जत है। जहां से हम गुजर जाते हैं तो लोग यूं नाक चढ़ाते हैं कि देखो कितना फैला के गए, कितना गंद डाला इन्होंने, कितने ही कचरे वाले झूठ हम बोलते। तो याद रखिए, इस वक्त मेरे और आपके कंधों पे वही जिम्मेदारी है जो कौमों की तकदीर बदलती है। इस वक्त जो मेरी और आपकी जिंदगी का मिशन है, वो सिर्फ बच्चे पालना नहीं है, हमें मुसलमान बच्चे पालने हैं। हमें वो सख्त कोश, जफाकश और वो ट्रस्ट वर्दी नस्लें तैयार करनी है कि जिनके हाथ में इस्लाम का आलम एक दफा आ जाए फिर वो नहीं गिरता। हमें मुसअब बिन उमैर जैसे बच्चे चाहिए, हमें मुआविज और माज जैसे बच्चे चाहिए, जिसने मैदान बदर में अब्दुलरहमान बिन औफ को रोक के कहा कि चचा अबू जहल की तरह, कभी तुम्हें उसे क्या लगे, 16-17 साल के दो बच्चे हैं, कभी तुम्हें उसे क्या लगे, कहा इसलिए कि हमारी माँ ने हमें सिखाया है कि मक्का में ये शख्स नबी सल्लम को गाली देता था, और आज हम घर से ये नियत करके आए हैं कि हम उसको खत्म करेंगे। अभी वो बातें ही कर रहे थे, कहते इतने में मुझे दूर अबू जहल दिखा जो सर पे शुतुरमुर्ग का पर लगाकर सब लोगों के बीच में, यानी उसके इर्द गिर्द लोग तलवारें डाले हुए हैं कि उसकी हिफाजत करें, सरदारों की हिफाजत होती है। तो कहते हैं मैंने कहा वो रहा तुम्हारा शिकार, और कहते हैं कि इतनी देर में वो दोनों बच्चे यूं भागे, वो जैसे वो कहते हैं ना गुंडी डंडे में से अदरक गिरता है, और जाके उन्होंने वार कर दिया। और बाद में दोनों तलवार लेकर आगे, वो कहते हैं मेरी तलवार से अबू जहल गिरा है, वो कहता है मेरी से। नबी सल्लम ने कहा कि तुमने तलवार साफ तो नहीं की? कहा नहीं। कहा लेके आओ, मैं दुश्मन खुदा का खून पहचानता हूँ। और जब आपने दोनों की तलवारों के खून को देखा तो कहा तुम दोनों की तलवार एक ही वक्त पे पड़ी है, तुम दोनों ने उसको मारा है। और वो जब गिरा तो उसके सीने पे अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला अन्हु चढ़ गए, लेकिन उसका तकब्बुर नहीं टूटा, उसकी गर्दन कट गई लेकिन तकब्बुर नहीं टूटा। कहने लगा वो चरवाहे बड़ी ऊंची जगह पे चढ़ गए, नऊज़ु बिल्लाह। और कहता है मेरी गर्दन काटोगे तो यहां से ना काटना, यहां से काटना ताकि मेरा सर जब जमीन पे गिरा हो तो गर्दन साथ हो, ताकि लोग कहें एक सरदार की गर्दन है। और अल्लाह के नबी ने फरमाया हर उम्मत का एक फिरौन होता है, और मेरी उम्मत का फिरौन अबू जहल है। और एक रिवायत में यहां तक आता है कि मेरा फिरौन मूसा के फिरौन से ज्यादा सख्त था। भला क्यों? मूसा का फिरौन डूबा तो क्या कहने लगा, आमंतु बिरब्बी, मैं अपने और मूसा के रब पे ईमान ले आया। लेकिन अल्लाह के नबी के दौर का फिरौन मरते वक्त भी कह रहा है कि मैं सरदार हूं और मुझे मार रहे हो, बड़ी खुशकिस्मती है तुम्हारी कि तुम मुझे मार रहे हो।